ओम शांति। आज हम सभी आपस में विशेष इस बात पर रूह रिहान करते हैं कि बाबा ने इस गाडली यूनिवर्सिटी की हमको डिग्री कौन सी दी है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है। तो इस हमारे राजयोग या गाडली यूनिवर्सिटी कहो, न्यारी यूनिवर्सिटी कहो, इसकी डिग्री क्या है आप सबको मालूम है? इसकी डिग्री कौन सी है? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सोलह कला संपन्न, देवता, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण हंसक, ये सारी हमारी डिग्री है। तो अभी आज इस पर सोचते हैं कि जो हमारी ये डिग्री है उसमें जो विशेष बातें हैं, पहले तो है सर्वगुण संपन्न, फिर सोलह कला संपूर्ण, फिर संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण हंसक, ये पांच बातें हैं। अभी इन पांच बातों की जो हमको इस यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है, उसमें से हमने इन पांच ही बातों के ऊपर कितना अटेंशन दिया, क्योंकि ये सब चाहिए बातें। अगर एक भी बात में कमी होगी, पुरुषार्थ ही रह जाएंगे, इसमें धारणा स्वरूप नहीं बनेंगे। तो बाबा ने सुनाया था कि कमी की निशानी तीर कमान और संपूर्णता की निशानी मुरली। श्री कृष्ण को मुरली दिखाते हैं और श्री राम को तीर कमान दिखाते। वैसे दोनों ही देवता है, कहते उसको भी देवता है, उसको भी देवता है, लेकिन वो तीर कमान वाला है और वो मुरली वाला है, फर्क है। वो सोलह कला है, वो चौदह कला है। तो तीर कमान क्यों दिखाया है? वैसे तो अगर त्रेता युग में भी कहें, हमारे गोल्डन एज में, तो कोई तीर कमान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तीर कमान की निशानी क्यों दिखाई गई है, तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। तो तीर कमान जो है ना, वो है युद्ध की निशानी। तो जो संपूर्ण नहीं बनता है इन पांच ही बातों में, अगर हम संपूर्ण नहीं बनते हैं और युद्ध करते करते ही शरीर छोड़ देते हैं मानो, तो ये युद्ध करते शरीर छोड़ने की निशानी जो है वो चंद्रवंशी तीर कमान वाला बन जाता है। और जो संपूर्ण बन जाता है, तो बाबा ने कहा ये जो नाचना है, एक तो सत बन गया, संपूर्ण बन गया, तो उसकी निशानी जो है वो मुरली जो है, उसमें आप देखेंगे मुरली का साज सुनने से ही जो बजाता है वो भी मन नाचता है उसका, और जो दूसरा सुनने वाले भी होंगे ना, मुरली बजेंगी अगर अच्छी ढंग से कोई मुरली बजावे तो आप देखेंगे आपको डांस नहीं भी करने आवे ना तो भी आपके बैठे बैठे भी हाथ पांव चलेंगे, क्योंकि मुरली है ही खुशी में नचाने की साधन। तो संपूर्ण बनने की निशानी है खुशी में नाचना, इसलिए उन्होंने मुरली सुन दी है। और युद्ध करते करते अगर कोई शरीर छोड़ता है, यानी संपूर्ण नहीं बनता है, कोई भी कला कम है, परसेंटेज कम है, तो उसकी निशानी जो है वो तीर कमान है, युद्ध की निशानी। तो हमको क्या बनना है, अगर बाबा हाथ उठाते हैं तो कोई भी श्री राम बनने के लिए हाथ नहीं उठाता। आप में से कोई राम बनने चाहता है? हाँ? राम बनेंगे? नहीं, त्रेता का राम बनेगा कोई? कृष्ण? नो कि यस? नो, नो राम। अच्छा है, तो अगर राम नहीं बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण बनना पड़ेगा। और संपूर्ण बनने में भी विशेष जो है वो हमको इन पांच ही बातों के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ संपूर्ण अहिंसा के ऊपर कुछ क्लास या चली है आपके। अहिंसा किसको कहती है, या मुरली चली है? दादी ने मुरली में सुनाया था डबल अहिंसा। तो इसका सार तो आप सुनते हो, एक एक की परिभाषा तो बहुत लंबी है, पांच टॉपिक के ऊपर पांच क्लास हो सकती है। लेकिन आज हम जो इन डिग्री में विशेष जो है 16 कला संपन्न कहते हैं, तो 16 कला संपन्न कौन, कैसे, क्या कहें? कलाओं के नाम तो मैं नहीं एक एक बोलूंगी, लेकिन टोटल सार में जो बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनो। अगर 16 कला आ जाएंगी तो सर्व गुण भी आ जाएंगे। कनेक्शन है, एक बात में अगर हम संपूर्ण हो गए, मानो सर्व गुण संपन्न भी हम हो गए, तो सर्व गुण संपन्न में 16 कला भी आ जाएंगी। और अगर 16 कला संपूर्ण हो गए तो सर्व गुण आ जाएंगे, संपूर्ण अहंसक हो जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएंगे, निर्विकारी हो जाएंगे। ये सबका एक दूसरे कनेक्शन। तो 16 कला बाबा ने एक बारी सुनाया था, तो वैसे 16 क्यों कहते हैं? वैसे इंडिया में पहले जो रुपया होता था ना, तो उसमें 16 आना होता था। 16 आना माना पूरा रुपया। इसीलिए भाषा में कभी भी किसको कहते थे ना, जैसे मानो कोई मेरे को इस बात पर पूरा फेथ है, तो आप लोग कहेंगे ना 100%। इसी रीति से यहाँ इंडिया में पहले यही कहते थे, 16 आना पक्का, यानी फुल फेथ की निशानी जो है वो ये 16 आना कहते थे, आप लोग 100% कहते। तो 16 कला यानी संपूर्ण, कोई भी कला कम नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, अष्ट शक्तियों का हमारा चित्र बना हुआ है, तो कोई अष्ट शक्तियां 8 नहीं है, लेकिन निमित्त मात्र मुख्य 8 दिखाई गई है ना, उसमें सभी आ जाती हैं। इसी रीति से 16 कला संपन्न का अर्थ है कि कोई भी कला कम नहीं हो, सर्व हो। पहले 16 कहते थे, अभी सर्व कला संपन्न कह दो, बात एक ही। तो सर्व कला होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि 16 कला संपूर्ण तब हम बन सकते हैं। कला है माना विशेषता है, समझो जैसे मिसला है कला। हम कहें भाई समय अनुसार हम में रमणीक बनने की और रमणीक बनाने की ये कला है, ऐसे समझो टाइम के प्रमाण। कला का भाव यही है कि जैसा समय हो, जैसा संगठन हो और जैसा ही वायुमंडल हो, उस अनुसार हम अपने को उसी प्रमाण एडजस्ट कर सकें, ये कला है। मानो वायुमंडल जो है वो रमणी का चल रहा है और उसमें मैं कहूँ नहीं मैं तो अंतर्मुखी हूँ, मेरे को तो गंभीरता ही अच्छी लगती है, बस मेरे को ये नहीं रमणीकता क्या है ये कुछ नहीं, तो ये रंग है, ये कला नहीं। जैसा समय यानी राइट रंग वाला नहीं, ऐसे नहीं कि क्लब में जाऊं तो क्लब जैसी हो जाऊं, वो रंग साइड नहीं। लेकिन राइट जो ब्राह्मण जीवन की है उस अनुसार जो है हमारे में बैलेंस होना चाहिए, रमणीकता का भी और गंभीरता का भी, लव भी हो लाभ भी हो, जो बैलेंस की बातें हमारे को मिली हुई है वो समय पर स्वरूप में आवे। एक होता है हमको बुद्धि में तो होता है कि भाई लव और लाभ दोनों होना चाहिए, लेकिन समय पर इस बैलेंस को मैं कार्य में लगा सकती हूँ तो इसको कहेंगे इसमें कला है। अगर नॉलेज तक है, सिर्फ बुद्धि तक है, लेकिन टाइम पर मैं काम में नहीं लगा सकती उसको, टाइम बीत जाता है, पीछे मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसे करती या करता तो ठीक होता, ये ठीक नहीं हुआ। मन तो खाता है बाहर से चाहे कुछ नहीं बोले, लेकिन मन तो खाता है ना। तो उसी प्रमाण बैलेंस को या ज्ञान की बातों को प्रैक्टिकल समय पर स्वरूप में लाना, इसको कहती है कला। तो जैसा समय हो और बैलेंस की बैलेंस तो रखना ही है हमको, कला में विशेषता दो चाहिए। एक कोई भी कला दिखाने के लिए आप देखेंगे, स्थूल कलाएं भी दिखाने के लिए दो बातें होती है उसमें, एक बैलेंस और दूसरा मोल्ड होना। जैसे मानो आप सर्कस देखते हो, वो क्या है, सिर्फ कला है। तो दो कलाएं उसमें होती है, एक मोल्ड बॉडी को मोल्ड करने की और दूसरा बैलेंस। तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी कलाएं दिखाई इन्होंने, लेकिन होता क्या, सिर्फ ये दो चीजें होती। इसी रीति से हम कोई भी कला विशेषता अपनी दिखाने चाहते हैं या धारण करने चाहते हैं तो इसमें दो बातें हमको धारण करनी पड़ेगी, एक बैलेंस की और दूसरी मोल्ड। तो अपने को समय प्रमाण मोल्ड कर सके और बैलेंस भी रख सके। मानो हमको रमणीक वातावरण है और रमणीक वातावरण में मुझे रमणीक बनना है, लेकिन मैं अपने को मोल्ड नहीं कर सकूं, बैलेंस नहीं रख सकूं, जो मैं रमणीक में इतना रमणीक हो जाऊं जो मुझे अंतर्मुखता ही भूल जाए, दो दिन मेरा वही चलता रहे। मानो कल्चरल प्रोग्राम हम करते हैं, अभी उसमें हंसी का भी बहुत करते हैं, तो कल्चरल प्रोग्राम तो 10 बजे पूरा हो गया कल, लेकिन मानो हमको वही चलता रहे, इसने फलाने ने एक्ट बड़ी अच्छी की थी, ये ऐसे रमणीक होना चाहिए, क्या योग में शांति शांति में बैठ जाए। इससे तो रमणीक प्रोग्राम अच्छा है ना, या किसकी एक्ट जो है रमणीक है, उस समय हमने इंजॉय किया वो ठीक है, उस समय ऐसे भी नहीं वो हंस रहा है और मैं ऐसे ऐसे रोने जैसी शिकल करके बैठूं, तो वो रंग है। लेकिन टाइम पूरा हुआ, रमणीकता का पार्ट पूरा हुआ, और फिर योग का हो तो योग के टाइम मुझे वही रमणीकता खींचती रहे, तो ये बैलेंस है। और ये अपने को मोल्ड करने की शक्ति है, जिस समय जो पार्ट चला उस समय अपना वही स्वरूप हुआ, और पार्ट चेंज हुआ तो हमारा भी चेंज। इसको कहते हैं मोल्ड होने की शक्ति। और वैसे भी आप देखो, जो भी हम सेंटर पर रहते हैं या अपनी लौकिक जाब में जो भी संपर्क में आप आते हो, ब्राह्मणों से भी कनेक्शन में आते हैं और अज्ञानियों से भी कनेक्शन में आते हैं, तो उसमें भी सफल वही होता है जिसमें ये कला है बैलेंस की और मोल्ड होने। अगर बैलेंस नहीं रख सकता है अपने बुद्धि की, मानो कोई ने कुछ कहा हमको और हमारी बुद्धि का बैलेंस ऐसा हो जाएगा, बस क्यों कहा, कैसे कहा, ये क्या ऐसे मानो चलता रहता है, तो उसमें ही संस्कार का टक्कर होता है। अगर मेरे को बैलेंस है, ठीक है, इसने बोला, वो बोलने वाला बोल के चला जाएगा, उसको भूल भी जाएगा, और अगर उससे मैं पूछूंगी तो वो कहेगा मैंने कहा था क्या, मैंने जो आया विचार वो कह दिया, वो ऐसा कर देगा। लेकिन मैं उसको बीती हुई को पीटती रहूंगी, जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं सांप तो चला गया लेकिन लकीर को पीटते ही रहेंगे, तो वो व्यर्थ, उसमें व्यर्थ बहुत चलता है और व्यर्थ टाइम भी जाता है, व्यर्थ एनर्जी भी जाती है और संस्कार का टक्कर होता है। तो कारण क्या होता है, इतने सारे नुकसान का कारण क्या होता है, कि हमको बैलेंस और मोल्ड करने की शक्तियां नहीं। अगर ये दो शक्तियां आप में आ गई तो आप सर्वगुण संपन्न भी बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण, जो भी 5 बातें हमने सुनाई ना, वो सब आप में बहुत सहज है। और जैसा समय, मानो कोई कहता है हमको, कोई भी बात हो जाती है, तो उसमें हमको समय प्रमाण अपने को मोल्ड नहीं करने की शक्ति होती है ना, तो मैं अपने संस्कार के वशीभूत होकर के, मानो मेरा रमणीक स्वभाव है या मेरा शांत का स्वभाव है, दो ही स्वभाव होते हैं ना, कोई 3-4 स्वभाव होते हैं मुख्य, एक होता है शांत स्वभाव, एक होता है रमणीक और एक होता है बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव, जो बात भी अच्छी होंगी लेकिन वो चिड़ता ही रहेगा, उस स्वभाव होता है, ये कोई नेचर जिसको कहते हो आप, तो हमेशा चिड़ता रहेगा, अच्छी बात भी चिड़ता रहेगा, तो कोई नेचर होती है किसकी चिड़चिड़ापन की जैसे, और कोई जो होती है उसकी नेचर मुख्य 3-4 जो नेचर होती है हर बात में कंफ्यूज होता रहे, कोई छोटी भी बात होगी ना, यहाँ से ग्लास उठा के यहाँ ग्लास रखना है, भाई ये क्या बड़ी बात है, लेकिन कंफ्यूज होने वाला इसमें भी होगा, यहाँ से यहाँ क्यों रखूं, ये यहाँ रखना चाहिए, यहाँ क्यों रखा, तो ये एक नेचर होती है कंफ्यूज होने की, तो वो जो नेचर होती है वो हमारी समय प्रति समय काम करती है, वो ऑटोमेटिकली समझो एक जन्म की नेचर किसकी होती है, लेकिन अभी हमारी ये नेचर नहीं है, संस्कार नहीं है, अभी हमारा नया जन्म हुआ है, कई बाबा ने सुनाया था, तो कई ऐसे ब्रह्मा हम लोगों में से ही कोई भाई बहने ऐसे हैं जो अपने को बचाने के लिए, अपनी गलती न मानने के बचाव का साधन यही है कि मेरी गलती नहीं है, मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन मेरी नेचर ऐसी है, मेरा स्वभाव है, तो ये बचाव का साधन बना देते हैं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कहेंगे क्या करूं, मेरा बचपन से नेचर ही रमणीक है ना, बहन जी मेरी फैमिलियरिटी नहीं है लेकिन मेरी नेचर रमणीक है, लेकिन नेचर रमणीक है, लेकिन समय पर नेचर रमणीक करनी है, समय पर गंभीर करनी है, वो मोल्ड करने की शक्ति नहीं है, तो इसीलिए वो नुकसान हो जाता है। और वास्तव में अगर हम देखें तो हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी नेचर ही ये है ना, अभी हमारा नया जन्म है, वो पास्ट जन्म की नेचर है। आप समझ रहे हो ना हमारी बात को, तो वो पास्ट जन्म की नेचर है, शूद्र की नेचर है, शूद्र जन्म की। और अभी जो हमारी नेचर होंगी ब्राह्मण जीवन की, वो रमणीक भी होंगी तो ज्ञान सहित होंगी, गंभीर भी होंगी तो ज्ञान सहित होंगी। ऐसे नहीं कि रमणी कैसी है जो जिस समय शांत करो उस समय भी हंसता रहेगा, तो वो कोई रमणीक नहीं हुआ, वो बिना ज्ञान के रमणीक है, वो नुकसान है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पास्ट जन्म की नेचर को मेरी नेचर नहीं कहो, उस दिन भी बाबा ने कहा। तो ये दूसरे रावण की, रावण राज की देन है ये, ऐसी उल्टी नेचर, ये रावण राज की नेचर है, तो मेरी कैसे हुई, ये तो पराई है, मेरी कैसे हुई, हुई मेरी हुई क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण की नेचर, ब्राह्मण के स्वभाव, ब्राह्मण के संस्कार, ब्राह्मण की विशेषता, जो ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की, वो हमारी, ठीक है ना, क्लियर। तो इसीलिए हम ये शब्द नहीं कह सकते हैं कि मेरी नेचर, मेरा संस्कार ऐसे हैं, मेरी आदत ऐसे हैं। आदत जो ब्राह्मण जीवन की आदत है वो मेरी आदत है, तो पिछला अगर हम ऐड करते हैं ब्राह्मण जीवन में, तो आधा ब्राह्मण बन के आधा शूद्र बन गए, आधा आधा, न वो रहे न शूद्र रहे न ब्राह्मण रहे, मिक्स। तो वो जीवन जो है ना, उसमें कभी भी आप खुश नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस समय हमारी जो नेचर है, हमारे जो स्वभाव संस्कार हैं, वो वास्तव में जो ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो हमारे कर्म के सैंपल है वो ब्रह्मा बाबा, साकार शरीरधारी है ना ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा तो है निराकार, अभी निराकार को कर्म में तो हम फॉलो नहीं कर सकते ना, को निराकार तो आता है थोड़े टाइम के लिए, मुरली चला के चला गया, लेकिन साकार ब्रह्मा बाबा जो है वो सारे ही 84 जन्मों के चक्कर में आता है हमारे साथ साथ, उनको ही हम फॉलो करते हैं। पूज्य वो बनता है तो हम भी पूज्य बन जाते हैं, और वो पुजारी बनता है हम भी पुजारी बन जाते हैं। तो सारे 84 जन्म जो हम फॉलो करते रहे हैं वो ब्रह्मा बाबा को, साकार बाबा को। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का जो स्वभाव, जो संस्कार, वही वास्तव में हमारा स्वभाव और संस्कार। तो बाबा का स्वभाव जो है वो आपने जीवन कहानी में पढ़ा होगा, बाबा की नेचर क्या थी, ब्रह्मा बाबा की वो कहानियां तो आप लोगों ने समय पर तो समय, विशेषता यही कला बाबा की थी, जो बच्चे से बाबा मिलेंगे ना, जैसा समय होगा वैसा रूप धारण करेंगे। समझो किसको अभी सखा रूप में बहला रहा है तो सतगुरु के रूप में बाबा दिखाई नहीं देगा, चाहे इतना बाबा बुजुर्ग सन था, लेकिन बच्चों के साथ जिस समय बात करता था ना, तो इतनी बड़ी बुजुर्ग बाड़ी दिखाई नहीं देती थी, जैसे ऐसे ही लगता था बाबा भी बच्चों के साथ बच्चा ही हो गए। अगर बच्चों के साथ बच्चा नहीं हो करके खेले या उनको बहलाए तो बच्चों को फीलिंग नहीं आएंगी। छोटा बच्चा भी बाबा के पास जाता था ना, हमने देखा है प्रैक्टिकल में, छोटा बच्चा बाबा से मिलके आएगा ना तो कहेगा ये बाबा तो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, मेरा है बाबा। उसको इतनी फीलिंग आती थी, हम कहते थे तुम्हारा काय का है, हमारा है, हम यहाँ रहते हैं, तुम तो अभी आए हो सिर्फ 3 दिन के लिए। तो भी वो कभी नहीं मानता था तो हमारा बाबा नहीं है, तुम्हारा है। कहेगा नहीं, पहले मेरा है बाबा। तो ये एक समझो कला है जो बाबा में देखी प्रैक्टिकल में, मोल्ड होने की भी और बैलेंस। वहीं बाबा हम लोगों को समझो, यहाँ क्लास में तो ऑफिशियल बाबा की मुरली चलती थी, जो बाबा की प्रवेश था और मुरली ऑफिशियल चलती थी। और फिर समझो हम यहाँ हाल से चैम्बर में जाते थे, बाबा के कमरे में होमली रीति से बैठते थे, उसको हम कहते थे मुरली के बाद चैम्बर में गए, तो उसको हम शब्द ये कहते थे। तो जब हम वो बाबा के कमरे में जाकर के बैठते थे, और बाबा अभी अभी ऑफिशियल मुरली चला के आए, लेकिन चैम्बर में फिर बाबा ऐसा रमणीक रीति से हंसाएगा करेगा, अच्छा ये मुरली में था, फिर तुम लोगों ने कोई ऐसा टोटका बाबा बोलता था, हम लोग कहते थे बाबा आज ये टोटका आपने बहुत अच्छा बोला। तो फिर एक सखी के रूप से जैसे बाबा वहां हम लोगों से बहलता था, तो जैसा टाइम वैसा रूप बाबा रखता था, तो हम लोगों को फीलिंग आती थी। तो ऑफिशियल मुरली के टाइम जो बाबा का रूप था, और अभी चैम्बर में जो हमारे से बाबा मुलाकात कर रहा है, उसमें रात दिन का फर्क। तो जैसा समय माने सखा रूप में बाबा हमसे बहलने चाहता है, तो ऑफिशियल सतगुरु के रूप में नहीं, जो हम कुछ बोल ही नहीं सके, लेकिन सखा हल्के रूप में बाबा हमारे से बैठे, तभी तो हम भी बोल सकेंगे ना। वैसे ऑफिशियल बाबा जब दृष्टि देता है और ऑफिशियल मुरली चलाता है, उस समय कोई बोल सकता है? उस समय तो ऑफिशियल रूप से हम भी ऑफिशियल होते हैं। थोड़ा बाबा हल्का होके कहते हैं कैसे हो, ठीक हो, थोड़ा हंसाता है तो हम लोग भी हंसेंगे, नहीं तो ऑफिशियल रहेंगे। तो जैसा समय वैसा रूप धारण करना, यही कला की नीति। इसीलिए हमको जो संस्कार स्वभाव में भी एक दो के साथ ब्राह्मण परिवार में या लौकिक में सफलता का साधन जो है ना, वो यही। अब दो शक्तियां अगर आपने धारण की तो आपने 16 कला आ गई। ऐसा नहीं, और क्या होगा जब हमारे में बैलेंस होगा ना, तो जहाँ बैलेंस होता है ना, एकाग्रता होती है बैलेंस। जैसे तराजू में भी देखो तो तराजू का बैलेंस जब होता है तो कांटा क्या होता है, एकाग्र हो जाता है ना, सिक जाता है ना। तो जहाँ एकाग्रता होती है, बैलेंस होता है, वहाँ निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। जैसे मिसला आप देखो, पानी है, पानी अगर एकाग्र हो जाता है तो आपको जो भी पानी में चीज होगी ना, वो स्पष्ट दिखाई देगी। और हिल रहा है पानी, चाहे कितना भी साफ हो लेकिन हिल रहा है, तो आपको जो चीज जैसी पड़ी है वो स्पष्ट नहीं दिखाई। एकाग्रता आधार है निर्णय शक्ति, एक्यूरेट निर्णय शक्ति। तो बैलेंस में क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो है वो बैलेंस के कारण एकाग्र हो जाती है। जैसे सागर में बहुत उछले आ रही है तो आपको पता नहीं पड़ेगा, अंदर इतनी मोटी बड़ी चीज भी पड़ी हो ना, दिखाई नहीं देंगी। और किनारे पर जब वो पानी आकर के एकाग्र हो जाता है तो आपको जो भी चीज होंगी वो स्पष्ट दिखाई देगी। तो बुद्धि की एकाग्रता, योग हम क्यों लगाते हैं, हमारे को योग से शांति क्यों मिलती है, शक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि हमारा योग से बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो इसमें भी स्वभाव हमारा जो है ना, बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो हमारा स्वभाव भी जैसे एकाग्र होता है, कभी वो हलचल में नहीं आता है। और उसमें दूसरा जो मेरे से कुछ चाहना रखता है, क्यों एक दो में टक्कर होता है, क्योंकि जो वो चाहता है वो मैं नहीं समझ करके उसको पूरा कर सकती हूँ, इसीलिए एक दो में टक्कर होता है। समझ नहीं सकती है ना एक दो के भाव को, तभी संस्कारों का टक्कर। तो इसी कारण अगर हमारी निर्णय शक्ति ठीक होगी, और निर्णय शक्ति का आधार हमने सुनाया आपको बैलेंस से एकाग्र शक्ति, एकाग्रता। तो एकाग्रता की शक्ति आने से एक तो हमारा बुद्धि का वेस्टेज सारा खत्म हो जाता है, एकाग्र हो गए ना तो हलचल खत्म, व्यर्थ संकल्प की, व्यर्थ एनर्जी की, ये सारी वेस्ट खत्म हो जाती है, शांति आ जाती। वैसे भी देखो आप लोग, कभी भी कोई बहुत सोचने का, कोई फैसला लेने की बहुत गंभीर बात होती है ना, तो एक दो में क्या कहती है, शांति से बैठ करके सोचो, ऐसे चलते चलते नहीं सोचने की बात है, शांति से बैठ करके सोचने की बात है। तो शांति में क्यों कहते हैं बैठ करके सोचने की बात है, क्योंकि एकाग्रता है, ये चलता भी रहेगा या बोलता भी रहेगा तो एकाग्रता नहीं होती है ना बुद्धि की, इसलिए निर्णय ठीक नहीं हो सकता। तो बैलेंस से एकाग्रता, एकाग्रता से जो निर्णय शक्ति बढ़ती है, इससे हमको समय पर, जैसा समय पर हम स्वरूप बनाने चाहे, जो संस्कार हम अपना इमर्ज करने चाहे, उस समय पर हमारा स्वभाव संस्कार वैसा ही एक्ट करेगा जो मेरे को आवश्यकता है या दूसरे को। ये मिसअंडरस्टैंड का ही सारा मामला होता है। आप देखेंगे आधी खिटखिट जो होती है ना, वो बात कोई ऐसी नहीं होती है बड़ी, लेकिन मिसअंडरस्टैंड छोटी बात को बड़ा कर दी, और मिसअंडरस्टैंड के कारण ही आपस में कई बार खिटखिट भी हो जाती है। तो मिसअंडरस्टैंड क्यों होती है, क्योंकि निर्णय पूरा नहीं, और बुद्धि जो है मिसअंडरस्टैंड होती तभी है जब मेरी बुद्धि अनेक तरफ घूमती रहती है ना, बात मैंने सुनी अधूरी, बुद्धि मेरी बच, चाहे मैं उसके सामने हूँ लेकिन क्या होता है कि सामने होते भी मेरी बुद्धि और भी घूम रही है, कई जगह भटक रही है, एकाग्र नहीं है। तो क्या होता है, पूरे बात का भाव हम उसका नहीं समझ सकते हैं, न उसके अंदर के भाव को हम कैच कर सकते हैं, न सुन सकते। कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें सुनने से भी बात होती है लेकिन भाव को कैच भी करना पड़ता है, सिर्फ बोल से नहीं होता है। तो अगर मेरी बुद्धि जो है वो एकाग्र नहीं है तो निर्णय शक्ति पूरी न होने के कारण मिसअंडरस्टैंड हो जाती है, और मिसअंडरस्टैंड जो है वो आपस में प्रेम को थोड़ा दूर कर ले। तो इसीलिए ये जो विशेषता है हमारी, इसको जरूर धारण करना। बाबा दूसरे शब्दों में हमको कहते हैं कि रियल गोल्ड की निशानी क्या होगी, मोल्ड, और रियल गोल्ड मोल्ड होगा, जो मिक्स गोल्ड होगा वो कभी भी मोल्ड नहीं होगा। हम लोग पता नहीं कहाँ विदेश में गए थे, मुझे शहर याद नहीं, वहाँ बहुत एक म्यूजियम था, उसमें पुराने सोने का दिखाते थे, मरते थे तो भी सोना पहन करके, मैं साउथ अमेरिका ही था, तो उसमें म्यूजियम में दिखाया था सच्चा सोना पहले कैसे था, तो ऐसे ही था जैसे एकदम पतरा था लेकिन रियल था, और उसको जैसे भी मोल्ड करो तो मोल्ड हो सकता है, और जो वैसे मिक्स करके बनाते उसको तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो बाबा कहते तुम रियल गोल्ड हो, मिक्स वाले नहीं हो, 16 कला माना रियल गोल्ड और 14 कला माना अलग मिक्स। तो हम रियल गोल्ड हैं, तो रियल गोल्ड की संपूर्ण 16 कला का जो कहते हैं 16 कला संपूर्ण, तो 16 कला संपूर्ण का अर्थ ही ये है कि हम रियल गोल्ड बने, तो उसमें ये मोल्ड होने की शक्ति जो है वो जरूर होगी, इसमें निर्णय शक्ति भी आ जाएंगी, परखने की शक्ति भी आ जाएंगी, सब जो भी है ना, जो आप जिस समय आपको यथार्थ बोलना चाहिए, जो बोल बोलना चाहिए और जो रूप आपका उस समय होना चाहिए वही हो, बनाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ऑटोमेटिकली होगी। क्यों? कि हमारे में बैलेंस और मोल्ड की शक्ति है, तो ऑटोमेटिकली जैसा समय मेरे सामने आएगा और जैसा स्वरूप मेरे सामने आएगा वैसे ही वो हो जाए। जिसको अभी लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा ना, नब्ज परखने की शक्ति चाहिए। डॉक्टरी का कोर्स एक ही सभी पास करेंगे, मानो MBBS क्या होता है, ये जो मानो है यही कोर्स करो, तो एक ही कोर्स ये भी करेगा ये भी करेगा, लेकिन एक जो है वो 5,000 एक मास में कमा लेगा, 10,000 कमा लेगा, एक जो है 500 भी कमा लेगा। अभी कोर्स तो दोनों ने एक ही किया, लेकिन फर्क क्या होता है उसमें, नब्ज को परखने की शक्ति होती है, इसीलिए दवाई ठीक देता है। और वो गपशप में जो भी आया, दवाई जो पड़ी है चलो दे दिया, तो इसीलिए उसके पेशेंट नहीं बढ़ेंगे, फायदा ही नहीं होगा तो पेशेंट कहाँ से। तो परखने की शक्ति जो है वो जिसमें ज्यादा होती है उसमें ज्यादा कमाई होती है। इसी रीति से हम लोगों में भी, हम लोगों को भी सर्वगुण संपन्न बनना है तो ये विशेषता हमारे में जरूर है। समझा आपने, 16 कला का फाउंडेशन जो है वो है ये विशेषताएं। इससे जो भी कला आप चाहे, जैसा समय वैसी कला, अंदर कोई के अंदर के भाव को पहचानना ये भी कोई कला है, कहती है ना, इसमें बस ऐसी कला है जो जिसको जो चाहिए ना वो अंदर के भाव को पहचान लेता है, जान लेता है, ये भी कला है। लेकिन ये सब कलाएं जो भी है उसका आधार ये है कि आप में ये दो शक्ति है, इससे सब आ जाए, समझा। अभी इस टॉपिक पर तो जो बोलना था वो बोला, अभी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, क्योंकि कईयों ने कहा हमको क्वेश्चंस है, तो कोई क्वेश्चंस हो तो अभी 15-20 मिनट जो पड़े हैं उसमें हम पूरा करेंगे। कोई क्वेश्चन दिए तो नहीं है पहले ना? अच्छा, नयो को तो एक ही क्वेश्चन है, आप बाबा जब आता है तब तो आप कहाँ होती हो, ये तो क्वेश्चन परंपरा का है। यही क्वेश्चन नए जो आते हैं ना पहले बारी, तो उन्हों का ये क्वेश्चन तो होता ही है। आपका है कोई का ये क्वेश्चन है? यस यस। दूसरी बात ये है कि ये दिव्य दृष्टि जो है ना, जिसको ट्रांस हम कहते हैं, तो ये ट्रांस जो है ना, कई कोशिश समझते हैं तो हमको भी तो ट्रांस का अनुभव होना चाहिए ना। तो क्या करे बहन जी, ऐसा क्या पुरुषार्थ है जो हमको एक बारी तो ट्रांस में देख के आए, तो बाबा का वतन देख के आए या शिव बाबा की लाइफ स्टोरी देख ले, तो एक बारी तो ट्रांस में जाना चाहिए ना। चलो हम इच्छा नहीं रखेंगे लेकिन एक बारी तो देखें। लेकिन है क्या बात कि ट्रांस जो है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती। ट्रांस के लिए आप पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है, जितना ही करेंगे ना, कहीं ऐसे ऐसे कहते नहीं बहन जी एक छोटा सा अभ्यास बता दो, लेकिन है ही नहीं उसके लिए। और जितना ही आप कोशिश करेंगे ना, मैं ट्रांस में जाऊं, उतना ही नीचे उतरेंगे। क्यों क्या होता है कि ट्रांस माना शरीर से गुम, शरीर से परे हो जाना। तो अगर आप में ये संकल्प होगा ना, मैं ट्रांस में जाऊं, थोड़ा देखूं, अच्छा थोड़ी रोशनी आने लगी है, सफेद है लाल है, मानो ये चलेगा ना आपका, तो ये संकल्प जो आपका होगा ना वो आपको नीचे ले जाने भी होंगे ना आप ट्रांस में, तो भी उतर आएंगे। इसीलिए ट्रांस में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, ये शिव बाबा का वरदान। अगर आपको ये वरदान ड्रामा अनुसार आपका पार्ट होगा तो आप नहीं भी सोचेंगे तो चलते फिरते भी आपको हो सकता है, नाउमीद नहीं रह बनना, कभी भी हो सकता है, लास्ट तक भी हो सकता है। तो होना होगा अगर आपको ट्रांस का अनुभव,
तो अचानक कभी भी होगा। अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो और ही नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं ना, राइट ही पुरुषार्थ नहीं है ना उसका। तो ये एक वरदान है या ड्रामा में एक पार्ट है। अभी मैं आपको बताऊं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ट्रांस शब्द भी क्या होता है। 8 साल की हम थी, 8 साल, 8 साल के बच्चे को हमको ये भी पता नहीं था तो रामकृष्ण भी कोई होता है। लेकिन 8 साल में हमको पहला साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का, तो पता भी नहीं था मुझे, मैं बता भी नहीं सकती थी। तो मैंने कृष्ण देखा या क्या देखा, हमको क्या पता ये कृष्ण होता है या क्या होता है, बचपन था ना। तो अगर होना होगा तो मुझे जैसे पता कृष्ण का भी नहीं, ट्रांस का भी नहीं था, और अचानक ही बैठे बैठे खेल रहे थे धागे से, छोटे बच्चे होते ना, सत्संग में गए बाबा के, और समझ में मुरली बुरली भी नहीं आती थी, छोटे थे ना, लेकिन माँ के साथ गए धागे, वो दरी जो होती है ना बिछाने की, बच्चा और कुछ नहीं मिलता तो क्या करता तो जो दरी बिछी हुई थी उसके धागे की गांठे ही बांध रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन जब ट्रांस में जाना था, वरदान था बाबा का, तो हमको पता नहीं पड़ा और हम गुम हो गई, ट्रांस में चली गई। तो इसीलिए ट्रांस जो है वो एक वरदान है या ड्रामा में पार्ट। इसलिए आप कोशिश करेंगे तो ये व्यर्थ कोशिश होगी। योग बले लगाओ, योग हमारी चीज है, योग अलग चीज है, ट्रांस अलग चीज है। मानो मैं ट्रांस में जाती हूँ, 8 बरस से मेरे को ट्रांस का अनुभव है, तो मैं कहूँ बस ट्रांस में जा सकती हूँ, मैं योग क्या लगाऊ, बस मैं गुम हो जाती हूँ। लेकिन नहीं, ट्रांस बाबा का वरदान है और योग अपनी पुरुषार्थ की प्रालब्ध मिलेंगे। तो ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि हम ट्रांस में चले जाते हैं तो बस सर्वगुण संपन्न का मेरे को तो डिग्री मिल गई, नहीं, फिर भी हमको योग लगा करके, ज्ञान की धारणा करके, हमको अपना पुरुषार्थ जो है वो जैसे आप करते हो वैसे ही करना पड़ेगा। बाकी ट्रांस में ये सिर्फ मदद है कि मानो कोई चीज कोई देख करके आता है और देख करके आके सुनाता है तो दूसरों को भी उससे एक स्पष्टीकरण हो जाता है, ये सेवा हो जाती है। मानो अभी मैं ट्रांस में जाती हूँ, बाबा आता है, तो ट्रांस में जाती हूँ तभी बाबा आता है ना, ट्रांस का पार्ट है हमारा, तभी बाबा ने हमको निमित्त बनाया मानो। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं ट्रांस में चली जाती हूँ, बाबा मेरे में आता है और बाबा इतनी सेवा हमारे से करा रहे, ठीक है हम तो पहुंच गए, पार हो गए। फिर भी हमको जैसे पुरुषार्थ करना पड़ता है वैसे ही करना। और योग जो है वो अपनी से कहते हैं अपनी कमाई का जो होता है, बाप की कमाई और अपनी कमाई में फर्क होता है ना, तो योग जो है वो अपनी कमाई और ट्रांस जो है वो बाबा की कमाई है, वरदान। तो इसीलिए ये ट्रांस अलग चीज है और योग जो है, ज्ञान जो है, दिव्य गुरुओं की धारणा जो 4 सब्जेक्ट हमारी है वो अलग, वो है पढ़ाई और वो है वर्ग, समझा आपने। बाकी जिस समय भी बाबा आता है, ये क्वेश्चन होते हैं बहुत करके, तो जिस समय बाबा आता है तो पहले तो जैसे सभी ट्रांस में और भी जाते हैं वैसे हम भी यहाँ आके बैठते हैं ना, तो पहले तो हम ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने माना सूक्ष्म वतन में पहुँचते, तो जब सूक्ष्म वतन में पहुँचते हैं तो वहाँ बाप दादा ब्रह्मा बाबा के आकारी शरीर द्वारा हमको शिव बाबा मिलता है, इसको हम कहते हैं बाप दादा। तो होता तो ब्रह्मा का ही आकार है ना, उसी में शिव बाबा मिलता है। तो पहले जैसे हम जाते हैं कोई ऐसी बात पूछते भी तो पहले से ही फिक्स होता है डेट, और बैठती हूँ माना तो बाबा को आना है, नहीं तो मैं बैठू, प्रोग्राम तो फिक्स होता है। तो फिर बाबा हमसे मुलाकात करके, और फिर बाबा कहता है अच्छा बच्चा, ऐसे कहता है और फिर उसके बाद जब बाबा प्रवेश होता है तो ऐसे नहीं है कि मैं इस शरीर में नहीं होती हूँ, इतने घंटे शरीर से आत्मा निकल जाए फिर तो वापस ही नहीं आएगी, फिर तो मैं परम धाम चली जाऊंगी। लेकिन वो होती इसी शरीर में ही है आत्मा। लेकिन क्या होता है, जैसे आप देखो टीवी है या रेडियो है, उसके स्विच होते हैं ना, चैनल भी आप घुमाते हो तो जिस चैनल पर आप वो स्विच ऑन करेंगे तो वो सुनने देंगे, सुनने आएगा ना। अगर आप स्विच ऑफ कर दो तो कितना भी चल रहा हो प्रोग्राम आपको सुनाई देगा नहीं, फिनिश, साइलेंस। तो इसी रीति से हमारे ये स्मृति का स्विच जो है ना वो ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन नहीं होता है। समझा? इसीलिए मैं होती यहाँ ही हूँ, शरीर में ही होती हूँ, लेकिन वो स्मृति का स्विच जो है वो हमारा जो है वो ऑफ होता है, इसीलिए मैं सुन नहीं सकती और पता नहीं पड़ता हमको तो बाबा इस समय क्या कर रहा है, या बोल रहा है, या बैठा है, या हिलता है, या नहीं हिलता है। जो भी कुछ बाबा करता है उस समय समझो हमारी शरीर की जिम्मेवारी जो होती है वो बाबा के ऊपर होती है, हमारे ऊपर नहीं होती। चाहे टांग नीचे करे न करे वो बाबा के ऊपर है, हमको पता नहीं पड़ता। तो इसीलिए होते हम यही शरीर में है लेकिन मर्ज होते हैं। और जब मैं आती हूँ, अपने बाबा चला जाता है तो उस समय भी मैं अपने को बाबा के वतन में ही देखती हूँ, और बाबा वतन में हमसे फिर मुलाकात करता है, और कोई समाचार होता है तो सुनाता भी है, लेकिन बहुत करके तो टाइम इतना लेट हो जाता है, जो बाबा को ये भी होता है कि शरीर को भी तो इतना टाइम हो गया है तो ज्यादा नहीं बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्शन होता है, मानो कोई से बाबा ने बात की और बाबा को है तो दीदी दादियों को सुनाना चाहिए ये बात या डायरेक्शन देना है, तो फिर हमको वो बाबा सुनाता है और मुलाकात करता है। अगर कोई डायरेक्शन होता है, बातचीत होती है तो बाबा हमको सुनाता है और हम मिल करके यहाँ इसी दुनिया में पहुंच जाती है। तो ये होता है, बाकी जितना टाइम बाबा होता है ना उतना टाइम बिल्कुल ही मुझे कुछ पता नहीं। और जब मैं लौटती हूँ उस समय हमारी स्टेज क्या होती है, जैसे कोई बहुत स्वीट साइलेंस के स्टेज से नीचे आवे ना, बहुत स्वीट साइलेंस और बहुत फ्रेश, लोग सभी समझते पता नहीं इसको कितनी थकावट होंगी, लेकिन मैं स्वीट साइलेंस के स्टेज से नीचे आती हूँ ना तो इसीलिए थकावट नहीं होती, और ऐसे लगता है जैसे मैं फ्रेश ही हूँ, कोई मैंने कुछ किया नहीं है। अगर मेरे को अपना कॉन्शियस होगा ना तो मुझे पता पड़ेगा ना मैंने इतना काम किया है, इतने घंटे मैं बैठी हूँ, लेकिन अपना कॉन्शियस नहीं है इसलिए मुझे ये भी नहीं होता है कि मैंने कुछ किया है, तो थकावट कैसे हुई? पहले तो स्मृति आवे ना मैंने कुछ किया है, मैंने किया ही नहीं और मैं अपने स्वीट साइलेंस के स्टेज पर हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। जो किया वो बाबा ने किया, बाबा थका या नहीं थका वो बाबा जाने, बाबा तो थकता ही नहीं। बाकी हमारी जो स्टेज होती है वो स्वीट साइलेंस, तो स्वीट साइलेंस की स्टेज ऐसे लगता है जैसे बहुत बहुत मीठी मीठी स्टेज है वो, उसी के अनुभूति से जैसे मैंने किया, ये होता है हमारा अनुभव। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा, और कुछ, और कोई क्वेश्चन है? क्या कहते हैं, फीलिंग होती है लेकिन ये नॉलेज तो हमको होता है ना भाई, 8 बज गए हैं, नॉलेज तो नीचे आने से तो सारी नॉलेज आती है ना भाई, 8 बज गए सुबह का, तो नेचुरल है अपनी जो दिनचर्या होगी उसी प्रमाण में चलूंगी ना। और थोड़ा ये नीचे आने से नॉलेज तो है ना, तो भाई इतना घंटा बैठा तो मेरा ही शरीर था, बाबा ने काम किया। तो फिर हम आगे के लिए भी बाबा का पाठ चलना होता है, तो जैसे एक उसके लिए आगे के लिए भी शरीर ठीक रहे, उसके लिए फिर मैं अपना थोड़ा साधन जो है, भाई थोड़ा लेट गया, नींद इतनी नहीं आती है, बानो सारी रात मैंने नींद नहीं की है तो मेरे को 4 घंटा नींद आ जावे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये मैं कोशिश करती हूँ, तो समझो दूसरे तीसरे दिन भी बाबा को आना है, एक दिन तो आना नहीं है, आगे भी आना है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए, जब मेरे कॉन्शियस में है मेरा शरीर, तो फिर उसको ठीक रखने के लिए जो मेरी जिम्मेवारी है वो मैं निभाऊं, बाकी थकावट के भाव से नहीं है। अगर मानो बाबा पहले 8 घंटे बैठते थे तो भी शरीर चल गया, और अभी 16 घंटा बैठता है तो भी चल गया, तो इसीलिए कोई उसका इफेक्ट नहीं आता है उस समय। बाकी थोड़ी सी संभाल अपने खाने की पीने की रेस्ट की, वो थोड़ा सा ध्यान रखती है आगे के लिए, तो वो रॉन्ग, वो कंट्रोलिंग पावर नहीं। वो क्या होता है, ज्ञान भी कई प्रकार का है। एक होता है बाबा ड्रामा अनुसार सेवा के अर्थ बुलाता है, एक मिक्सचर भी होता है, आदत पड़ जाती है जैसे बस अनकॉन्शियस होने की, तो वो रंग वो योग से कंट्रोल होगा। नहीं तो वो चलते फिरते करे ना योग, बैठे ही नहीं, अगर उसकी ऐसे लूज पॉइंट है तो वो बैठने से अगर गुम हो जाता है तो चले फिरे, थोड़ा टाइम उसको अवॉइड करें, और फिर अवॉइड हो जाएगा, आदत पड़ जाएंगी तो फिर नहीं बस। हाँ हाँ, वन वन क्या कहते हैं, वन मिनट। हाँ पहले उससे पूछ। हाँ वो क्या होता है, हमको तो उस समय पता नहीं पड़ता है, लेकिन ये होता क्या है, नॉलेज तो है, तो उस हिसाब से क्या होता है, जब बॉडी से आत्मा अनकॉन्शियस हो जाती है ना, परे हो जाती है ना, तो जैसे एक हल्का शरीर होता है उसके कारण ये होता, बाकी ये नहीं है कि कोई, कईयों को हल्का भी है, कभी नहीं, ऐसे हल्का भी आता है, कभी जोर से भी आता है, लेकिन ये होता है जिस समय आत्मा समझो शरीर से अनकॉन्शियस होती है ना, तो शरीर हल्का हो जाता है, इसलिए ये करता है। अच्छा, और मगज का बीमारी, योग, वो बेचारे अनुभवी नहीं है ना, वो तो कई बातें कहेंगे नहीं। वो फिर क्या होता है कि योग में भी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। कई योग में क्या होता है कि योग में बैठे रहेंगे ना, 4 घंटे बैठे ही रहेंगे, या काम काज भूल जाएंगे, कहेंगे मैं तो अपने योग में इतना मस्त था जो मुझे पता ही नहीं पड़ा 8 बजे या 4 बजे, तो ऐसे कोई रॉन्ग कर्म होते है ना, इसीलिए दुनिया वाले पागल कहते। वास्तव में एक बात मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल सुनाती हूँ। एक बारी क्या हुआ, दिल्ली में मम्मा आई थी मातेश्वरी, तो मम्मा आकर के रही थी, तो क्लास होता था, मम्मा का वाणी चलती थी, तो मम्मा तो एक ही स्थान पर रहती थी लेकिन सेंटर तो वहाँ बहुत है, तो सभी सेंटर वाले सुबह के क्लास में जो है वो बस द्वारा कार द्वारा पहुंचते थे। तो एक माता थी, वो मम्मा की मुरली पूरी हो गई, मम्मा कमरे में चली गई तो वो पहुंची, और उसने आके कहा, मम्मा आज तो मेरा बस में इतना योग लग गया जो मुझे पता ही नहीं पड़ा कि बस स्टॉप आया है, और मैं दूसरे बस स्टॉप पे आगे चली गई, और फिर मुझे लौटना पड़ा इसलिए मुझे लेट हो गया। तो मम्मा ने उसको कहा कि ये कौन सा योग तुमने किया, ये योग तुम क्या कह रही हो, ये योग किया तुमने, योग तुम किससे लगाती हो, सत बाप से लगाती हो, सत गुरु से, सत्य है वो, तो सत बाबा से योग लगाना माना हमारा कर्म भी सत हो ना। अगर आप इतने आपको पता ही नहीं पड़ा ये, यानी रॉन्ग काम हुआ ना, कोई भी सुनेगा तो इसको उतरना था रजूरी गार्डन और उतर गई जाके तिलक नगर, तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा योग तुमको सिखलाया जाता है जो पता ही नहीं, तुमको होश ही नहीं कि मुझे कहाँ उतरना है, ऐसे तो कोई भी तुमको कहाँ ले जाए तो भी पता नहीं पड़ेगा। तो ये रॉन्ग काम हो जाते हैं ना हमारे। तो मम्मा ने कहा ये राइट योग नहीं है तुम्हारा, ये उल्टा योग है। सत्य बाब के साथ जो योग होगा तो तुमको अच्छा योग में मस्त हो गई, लेकिन सत्य योग है तुम्हारा, राइट है, तो तुमको टचिंग आनी चाहिए ना, मेरा स्टाफ आ गया। इतनी भी टचिंग नहीं आई सत्य कर्म की, तो तुम्हारा रियल योग यथारथ योग कैसे हुआ? तो मम्मा ने उसको उसी समय बहुत डांटा। मम्मा ने कहा ऐसा योग कभी नहीं लगाना, ये बाबा को बदनाम कर देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों में कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है और थोड़ा बह जाते हैं, जैसे हमने कहा ना, तो अपने को एक बैलेंस रखने का, कंट्रोलिंग पावर का नहीं होता है ना, तो टू मच में जब चले जाते, कोई भी बात में टू मच खाना खा लो, टू मच हंस लो, टू मच रो लो, कोई भी बात टू मच आप करेंगे उसमें नुकसान होगा। तो इसी रीति से ये भी टाइम, अभी दफ्तर में मुझे 8 बजे जाना है, मैं योग में बड़ा मजा आ रहा है, दफ्तर का बाबू भले मेरा ही एब्सेंट डाल दे, या दूसरे दिन कहे तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई, मेरा से योग लगा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी योगी हुआ। योगी का अर्थ है सत कर्म करने वाला योगी, कर्म योगी भी है ना हम, सिर्फ बुद्धि योग नहीं है हमारा, लेकिन बुद्धि योग के साथ हमारा सत कर्म है, कर्म योगी है। तो कर्म, सत कर्म हमारे होने चाहिए, कर्म हमारे उल्टे हो रहे हैं और हम कहें हम सत कर्म योगी है तो कैसे मानेंगे? तो कहां न कहां हमारी कोई गलतियां हो जाती है, जिसके कारण भी लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा ये होता है कि ये योग सीखे है या घर और काम ही उल्टा करने लगे। तो ये भी कहा गलती हमारी नहीं होना चाहिए, टाइम हमको टचिंग होनी चाहिए। बाबा तो कहते हैं 4 बजे जो है वो आपको, अगर 4 बजे उठना ही है, हमारी भावना अच्छी है तो मुझे उठना है, लगन है। एक होता है ठीक है थकी हुई तो हूँ, चलो उठ गई तो उठ गई, तो फिर नहीं उठेंगे आप, पहले ही संकल्प आपका कमजोर होता है ना, थकी हुई तो हूँ, उठूंगी, कोशिश करूंगी उठने की, कभी नहीं उठेंगे, क्योंकि संकल्प आपने लास्ट में अंत मते सो गति आपकी वही होगी। संकल्प ही वीक रखा ना सोने के टाइम, तो आपका कर्म भी वीक ही होगा, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये इतनी हमारे योग में पावर है, जो आपको घड़ी देखने की भी आवश्यकता नहीं है, जिस समय आपको जो टाइम होगा वो आपको टचिंग होंगी, योग माना सत्यता, सत्य करो, राइट करो, योग का तो यही प्रैक्टिकल रूप है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक, अच्छा, और क्या कहते हैं, टेम्पररी आता है ना, परमानेंट थोड़ी बैठता है, टेम्पररी होता है ना? जैसे मकान हमारा है तो टैक्स वगैरह तब हमको भरनी पड़ेगी, किराए पर है, अपना मकान है तो सब उनको करना पड़ेगा, ये तो लोन लेता है थोड़े टाइम के लिए, इसीलिए हमको करना तो हमको ही पड़ेगा। अच्छा, और बस फिनिश, किसको और कब कहते हैं वो, ये समझो अभी ये सीजन पूरी हुई ना, तो क्या है कि ब्राह्मणों को बहुत संख्या है, इंडियन इतने हजारों के अंदाज में है, फॉरेनर्स हैं, तो अगर हम डेट्स फिक्स नहीं करें बाबा तो टर्न नहीं बन सकते, संख्या नहीं मुकरर हो सकती। और आप लोग मानो टिकट रिजर्वेशन कराते हो 2 मास 4 मास 5 मास पहले कराना है, तो इसके कारण ब्राह्मणों को, बच्चों को सहज हो तो सीजन पूरी होने के बाद ही दादी मैसेज भेजती है हमारे द्वारा, और दादी कहती है तो बाबा अगले सीजन में किस ढंग से होगा, कितने मास में आप आएंगे, किस ढंग से ग्रुप बनेंगे, तो दादी मैसेज देती है और बाबा फिर उसको पहले से ही फिक्स कर देते हैं, जिससे बच्चों के ग्रुप और रिजर्वेशन ठीक रीति से मिल। अच्छा, क्या कहते हैं, लेकिन हम जो भी इंग्लिश हम भी सीखे है ना, वो भी बाबा से ही सीखे, मूल्यों से ही सीखे है, इसलिए बाप दादा बोलता है तो हम भी सीख गए। ये बाबा की रिवाइज कोर्स की मूल्य देखो ना, तो आधी मूल्य इंग्लिश शब्द होते हैं। आपको एक हंसी की बात सुनाऊं। एक हमारे दिल्ली में आती थी 70 वर्ष की बुजुर्ग माता, तो वो इंग्लिश तो जानते नहीं, हिंदी भी अक्षर भी पढ़ना नहीं जानती, लेकिन मुरली जो सुनते हैं और पढ़ते हैं ना, तो उसमें इंग्लिश शब्द बहुत होते हैं मुरली में। तो वो इंग्लिश शब्द ऐसे रच जाते हैं हम ब्राह्मणों को, तो हिंदी है या इंग्लिश कुछ पता नहीं पड़ता, लेकिन बाबा के शब्द है इसीलिए हम ऐसे ही बोलते हैं जैसे इंग्लिश भी हिंदी है, हिंदी भी इंग्लिश है, लेकिन बाबा के शब्द है। तो इसी रीति से वो एक कोई आया वकील, तो वकील वैसे ही बाबा से मिलने आया, तो तब बाहर वो बैठी थी, तो वो खुशी खुशी में उसको कहने लगी, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े लकी हो, और हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी एजुकेशन है। तो वो इतने इंग्लिश बोले अक्षर उससे, तो वो कहने लगा, माता जी तुम कितना पढ़ी हुई हो। कहा तो हम तो कुछ शब्द ही नहीं पढ़े है, पुराने जमाने में भाई मैं पैदा हुई वहां तो पढ़ाते नहीं थे माताओं को बहनों को, मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ। तो कहता है वो उसको, कहते है तुम तो ऐसी इंग्लिश बोल रही हो जो बीए एमए वाले भी नहीं बोल सकते है, और तुम कैसे बोल रही हो। कहती मैंने इंग्लिश बोला क्या। उसने कहा मैंने इंग्लिश बोला क्या, कहा तुम इंग्लिश ही तो बोल रही हो। कहती ये तो बाबा ने मेरे को सुना है ना, वो मैं बोलती हूँ। तो हम लोगों को बाबा के शब्द ऐसे पक्के हो गए हैं, जो इंग्लिश भाषा या हिंदी भाषा हमारे बाबा की भाषा है, इसीलिए आधी इंग्लिश तो हमको बाबा ही सिखाते हैं, समझा। परम नाम क्या कहती। नहीं ये ट्रांस का तो थोड़ा सा टाइम होता है ना, बाकी तो शरीर से निकलने का टाइम तो, जाने का टाइम तो थोड़ा ही होता है, थोड़े में ही फीलिंग होती है ना ज्यादा। तो इसीलिए ये ट्रांस का पार्ट जो है वो जितना ही टाइम हम समझो बाबा है उतना टाइम वतन में नहीं होते, पहले सिर्फ थोड़ा टाइम मुलाकात कर। हाँ नहीं, बाबा इमर्ज हमको बुलाता है ना, सेकंड में बुला लेता है बाबा, बुलाता है। नहीं ये देखो, ध्यान में जाने में, ध्यान में जाना जैसे स्वप्न देखते हो आप, अभी स्वप्न में आत्मा कोई निकल नहीं जाती है, लेकिन आपको अनुभव यही होगा कि मैं गई, कोई आत्मा निकल नहीं जाती है, लेकिन श्रांत में अनुभव यही होता है कि मेरी आत्मा कैसे निकली और बाबा के वतन में पहुंची। जैसे स्वप्न में आपने देखा आप लंदन घूम के आए, तो कोई आत्मा आपकी निकल के लंदन नहीं गई, होती वहाँ ही है, लेकिन स्वप्न के द्वारा आपको अनुभव रियली होता है कि नहीं मैंने खाया भी, उसकी टेस्ट भी होती है। इसी रीति से हम ट्रांस में जब जाते हैं तो कोई आत्मा निकलती नहीं है, लेकिन ट्रांस के आधार पर अनुभव यही बाबा कराता है, मैं ऐसे ही समझूंगी मैं निकली, ये नहीं मैं समझती हूँ कि नहीं मैं यहाँ हूँ और देख रही हूँ, नहीं, हमको अनुभव यही होता है कि हम बाबा के पास पहुंची, यहाँ से गई, लगता है बस मैं अभी जैसे क्लोरोफार्म लगता है तो बॉडी का कॉन्शियस भूलता जाता है ना, इसी रीति से ही फीलिंग आती है, अनुभव होता है, कोई मनोमय नहीं होता है, लेकिन अनुभव होता है कि मैं गई बाबा के पास। वैसे नॉलेज के हिसाब से देखें तो आत्मा कोई शरीर को छोड़ के नहीं जाती, आत्मा शरीर को छोड़ करके निकले फिर वापस आना मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि हिसाब किताब है ना, निकलेंगी तो आगो पर एक बार निकलेंगी, बाकी वैसे जो है जब तक शरीर से हिसाब किताब है तो तब तक आत्मा निकलती नहीं है, लेकिन ट्रांस द्वारा अनुभव ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मैं यहाँ स्वप्न के टाइम, जैसे आपको नहीं फीलिंग होगी तो कोई स्वप्न मैं देख रही हूँ, वैसे जब ट्रांस के टाइम में हम जाते हैं तो ये नहीं पता पड़ता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे वतन में पहुंची हूँ या निकल रही हूँ, ऐसे ही फीलिंग होती है जैसे मैं निकली, आत्मा में जा रही हूँ, आकाश बादल वगैरह सब क्रॉस कर रही थी और मैं बाबा के पास। नहीं, वो तो ज्ञान के बिना जो होता है ना, ज्ञान माना नॉलेज, नॉलेज की शक्ति होती है, और बाबा के कनेक्शन से हम जाते हैं, वो तो दूसरे साक्षात्कार है, उसमें कुछ भी बाबा के पास हमारे बुद्धि की डोरी है तो नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें एडिशन करते हैं अपने मन मत भी, कल्पना भी, तो नुकसान। हमने नहीं देखा। हम लोगों की तो देखो सेवा के अर्थ जाती है ना, तो सेवा के अर्थ जाती है तो डायरेक्ट वहाँ ही पहुँचते हैं और वहाँ ही जो बाबा दिखाता है वही देखते हैं। बीच में रुकना देखते हैं ना, रुकते हैं। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन जिसको भी पूछना हो, लास्ट वो हमारा। यानी बाबा उस समय पानी तो बाबा लेकर के पिएगा, मैं तो नहीं पीऊंगी, या पानी पिएगा या कुछ भी करेगा तो वो तो बाबा करेगा, लेकिन हिसाब किताब बाबा का नहीं है। वो तो पहले ही शरीर की कोई कमजोरी या बीमारी होंगी, वो उस समय भी अपना काम करके, इसीलिए ये हिसाब किताब हमारा है, बाबा का नहीं है। बाबा तो यूज कर रहा है टेम्पररी। खांसी होंगी तो चलो करके शांत करता होगा या कुछ तो करेगा ना, तो इसी रीति से हिसाब बाबा का नहीं है, सिर्फ उस समय यूज करता है। अच्छा, ओम शांति।